قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ ہمیں اپنی اولادوں کو ایمان سونپنا ہے، ایمان منتقل کرنے کا، ایمان کسی کے حوالے کرنے کا، اس کی زندگی میں شامل کرنے کا ایک طریقہ۔ پولوس رسول نے اپنے شاگرد تیموتھیوس کو بتایا تھا کہ تو ایمانداروں کے لیے، وہ جن میں ایمان موجود ہے، تو ان کے لیے بھی ایمان میں نمونہ بن جا، ماڈل بن جا، تو ان کے لیے مثال بن جا کہ ایماندار بھی یہ سمجھیں اس شخص میں ایمان خوبصورت ترین ہے، قیمتی ترین ہے، پاک ہے، معتبر ایمان ہے اس کا۔ اور اس کو طریقہ ونڈ سمجھا دی، اسے اس کو میتھڈ بتا دیا کہ کیسے تیرا ایمان لوگ دیکھیں گے، پرکھیں گے، تعریف کریں گے اور تجھے نمونہ سمجھیں گے، مثال سمجھیں گے۔ وہ یہ ہے کہ تو اپنے ایمان اور اس تعلیم پر قائم رہنا اور اپنے چال چلن، اپنے کردار سے اسے ظاہر کرنا۔ سو ایمان منتقل ہوتا ہے ایمان پر چلنے سے، ایمان ظاہر کرنے سے۔ کیسے ظاہر کریں، کیسے ایمان پر چلیں؟ آئیے خدا کے کلام میں سے ہم سیکھنا شروع کریں۔ کلیسیا میں ایمان کا عملی اظہار، ڈیمونسٹریشن آف فیتھ ان دا چرچ۔ ہم ایک کلیسیا کے طور پہ اکٹھے ہیں، ہمارا وجود اس دنیا میں اور اس ملک میں ایک کلیسیا کے طور پر ہے، خدا کے گھرانے کے طور پر ہے، ایک ایمانداروں کی جماعت کے طور پر ہے۔ وی آر اے گروپ آف بلیورز، دا فالوورز آف جیزس کرائسٹ، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں، چلڈرن آف گاڈ ہیں۔ کلیسیا میں ہم اپنے ایمان کا عملی اظہار کیسے کریں، ہاؤ وی کین ڈیمونسٹریٹ اور پریکٹیکلی ایکسپریس آور فیتھ ان دا چرچ۔ ایک کلیسیا کا حصہ ہوتے ہوئے، ایک کلیسیا کی صورت میں زندگی گزارتے ہوئے، میں اپنا ایمان کیسے ظاہر کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، دل میں تو رکھ لیا کہ ایمان ہو گیا، جی میرے پاس ایمان ہے، میں ایمان لے آیا ہوں، میں نے ایمان رکھا ہوا ہے، میں ایماندار ہوں، لیکن ظاہر کیسے ہوگا کہ میں ایک ایماندار ہوں؟ میرا ایمان کیسا ہے؟ یہ نمونہ بننے کے لائق ہے، کسی کو متاثر کرنے کے لائق ہے، یا یہ شاندار ہے، یہ وہ ہے ایمان ہے کہ جس کی خدا تعریف کرے، جو خدا کو پسند آئے؟ کیونکہ ہم سیکھ چکے ہیں کہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے، اٹ از امپاسبل ٹو پلیز گاڈ وداؤٹ فیتھ۔ تو ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم اپنا ایمان کلیسیا میں عملی طور پر، پریکٹیکلی ظاہر کر سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ایمان بغیر عمل کے مردہ ہے، جب تک ظاہر نہیں ہوگا ایمان، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ خدا کے کلام میں اس بابت ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ یہ مت سوچو کہ ایمان رکھ لیا بس کافی ہو گیا، بس جی ایمان لے آئے ہیں، نہیں، یہ کافی نہیں۔ اگر ایمان پر چلنا نہیں، ایمان کے مطابق زندگی نہیں گزارنی، اگر ایمان پر عمل نہیں کرنا، تو پھر وہ ایمان بے فائدہ ہے۔ اور کلام یہ کہتا ہے کہ بغیر عمل کے ایمان مردہ ہے، فیتھ از ڈیڈ وداؤٹ ایکشن۔ اگر وہ ایمان عمل میں ڈھلتا نہیں ہے، وہ ڈھالا نہیں جا سکتا عمل میں، تو پھر وہ ایمان ہمارے کسی کام کا نہیں، وہ مردہ ہے، دیٹس ڈیڈ فیتھ۔ پہلا عملی اظہار یہ ہو سکتا ہے اپنے ایمان کا کہ ہم کلیسیا کا حصہ بن جائیں، ہم کلیسیا میں شامل ہو جائیں۔ اگر آپ ایماندار ہو گئے ہیں، اگر آپ ایمان کے حامل ہیں، تو پھر آپ کلیسیا کا حصہ بنو گے، پھر آپ ڈھونڈو گے کلیسیا کا حصہ بننے کے لیے راستے، میں کس طرح سے کلیسیا کا حصہ بنوں؟ کیونکہ ایماندار کبھی اکیلا نہیں رہ سکتا، उसे रफाकत चाहिए। और हम तो अपने ईमान के इकरार में, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, मैं ईमान रखता हूं रूहुल कुद्स पर, पाक कुलिया कलीसिया पर और मुकद्दसों की रफाकत पर। अगर मेरा ईमान है मुकद्दसों की रफाकत और पाक कलीसिया पर, तो मैं कलीसिया का हिस्सा बनूं ही बनूं, मैं कलीसिया से दूर नहीं रहूंगा। अगर कोई शख्स कलीसिया से दूर रहता है, अगर कोई शख्स कलीसिया का हिस्सा बनने से परहेज करता है, अगर कोई शख्स कलीसिया के साथ मिलने से परहेज करता है और अपने आप को दूर रखता है, तो फिर उसके ईमान पे आप और मैं शक कर सकते हैं कि यह ईमानदार है भी या नहीं। क्योंकि जो ईमान वो बता रहा है, जो उसका ईमान है, वो तो उस पर अमल ही नहीं कर रहा। ईमान है मुकद्दसों की रफाकत और पाक कुल कलीसिया पर, तो कलीसिया का तो उसको एहसास ही नहीं, वो तो कलीसिया में शामिल ही नहीं। आप अपना ईमान जाहिर कर सकते हैं कलीसिया का हिस्सा बनकर, और करना चाहिए। आप अलग रहेंगे तो आप ठंडे पड़ जाएंगे। कोयलों की अंगीठी की मिसाल बहुत दी जाती है, ये कोयला उठा के दहकती अंगीठी में से अलग कर दे तो वो थोड़ी देर में बुझ जाएगा, लेकिन अगर उसी को उठा के दोबारा उस दहकती हुई अंगीठी में डाल देंगे तो फिर से वो जल जाएगा, फिर से उसमें हिद्दत आ जाएगी, फिर उसमें जिंदगी आ जाएगी। ईमानदार कभी भी कलीसिया से दूर नहीं रह सकता, वो लाजम किसी कलीसिया का हिस्सा बनेगा। मैं ये नहीं कहता कि किसी मखसूस कलीसिया का हिस्सा बनो, हां वो कलीसिया जो खुदा के कलाम को मोतबर मानती है, इंसानी बातों को नहीं, जिसका ईमान आलूदा नहीं है। और आलूदा ईमान की बाबत हम तालीम पा चुके हैं। किसी कलीसिया का हिस्सा बने, शामिल हों कलीसिया में, तभी इजहार होगा कि आप ईमान पर अमल कर रहे हो। सो कभी भी कलीसिया से दूर नहीं रहना, कलीसिया का हिस्सा बने, अपना नाम रजिस्टर्ड करवाएं, कलीसिया में शामिल हों और पूरे हकूक हासिल करें कलीसिया का मेंबर होने के। ईमान का इकरार, कई लोग होते हैं उन्होंने सीखा ही नहीं ईमान का इकरार कैसे करना है, ना जुबानी आता है और ना समझ के साथ आता है। लेकिन खुदा का शुक्र करता हूं कि हमने बतौर कलीसिया ईमान का इकरार, जो रसूलों का अकीदा हम पढ़ते हैं, हमने उस पर तालीम पाई है, हमने उसे जान लिया, समझ लिया है, और हमने उसे जानने के बाद अपना लिया है कि मैं इसे कबूल करता हूं अपने ईमान के इकरार के तौर पर। कलीसिया में शामिल होके आप इजहार करते हो जब अपने ईमान का इकरार करके, तो आप दुनिया को बता रहे हो कि मैं अपने ईमान पर अमल कर रहा हूं। क्योंकि इकरार जरूरी है, खुदा का कलाम यह कहता है कि निजात के लिए ईमान लाना दिल से है लेकिन इकरार मुंह से किया जाता है। और खुदा के कलाम में यह भी लिखा हुआ है कि तू अपने इकरार पर कायम रह। हमने जो खुदावंद यस्सू के लिए इकरार किया है, हम उस पर कायम रहें, हम उसे थामे रहें, मजबूती से थामे रहें उस इकरार को। तो जब भी इबादत में आते हैं और कहीं ईमान के इकरार का वक्त आता है, खामोश ना रहें, इकरार करें। इससे जाहिर होता है कि आप ईमान रखते हो और आपको इसकी सच्चाई का यकीन है और आप कलीसिया के साथ मिलके वो इकरार कर रहे हो। खामोश ना रहें कलीसिया में, इकरार करें अपने ईमान का। और जो लोग पहली बार कलीसिया का हिस्सा बनते हैं, चाहे वो गैर कौमों में से बने, चाहे वो अपनी कलीसिया में परवरिश पाने वाले बच्चे हों, जब उन्हें एक फुल मेंबर के तौर पर, एक कम्युनिकेंट मेंबर के तौर पर, खुदावंद की मेज में शिरकत करने का हक रखने वाले रुकन के तौर पर कबूल किया जाता है, तो खुदा के खादिम उनसे ईमान का इकरार करवाते हैं पब्लिकली। इसीलिए करवाया जाता है वो इकरार कि आप अपने ईमान का इजहार करो कलीसिया में, करो कि तुम्हारा ईमान क्या है, तुम उस पर कारबंद रहना चाहते हो, इरादा करते हो खुदावंद के हजूर उस ईमान को अपनाते और उसमें कायम रहने की ख्वाहिश का इजहार करते हो। इकरार बड़ा जरूरी है कलीसिया में। जब आप अकीदा पढ़ते नहीं हैं तो फिर आपके ईमान का इजहार मुझे कैसे पता कि आप किस बात पर ईमान रखते हो। तो जब भी मौका मिले आप अपने ईमान का इकरार कलीसिया के साथ मिलके जरूर किया करें। फिर कलीसियाई इबादतों में शराकत, जब इबादत हो रही है, जब कलीसियाई इबादतें चल रही हैं, तो आप अपने घराने समेत खुदा के घर में कलीसिया के साथ मिलकर इबादतों में शामिल हो। आप घर में बैठे हुए हो, इबादत में शामिल नहीं होते, तो किसी को क्या पता चलेगा कि आप मसीही रहे भी हो कि नहीं। अब जो बंदा फरवरी 2020 के बाद मेरे साथ इबादत में शामिल नहीं हुआ, मुझे क्या मालूम कि वो मसीह में मौजूद है भी कि नहीं। मुझे क्या इल्म है उसके ईमान का कि वो कहीं पलट गया है कि नहीं। मुझे क्या मालूम कि वो कहीं आलूदा ईमान करवा बैठा है कि नहीं। मुझे क्या मालूम कि वो अपने ईमान के इकरार पे कायम है भी कि नहीं। कलीसिया में आप अपने ईमान का इजहार करते हो जब आप इबादतों में शामिल होते हो, एहसास दिलाते हो कि मैं आपके साथ मिलके एक ईमान पर कायम हूं और उस ईमान की वजह से मैं अपने जिंदा खुदा की इबादत करता हूं। आपके साथ मिलके खुदा बाप की, खुदा बेटे की और खुदा पाक रूह की प्रस्तुति करता हूं। इबादतों में शामिल होने से हम अपने ईमान का इजहार करते हैं कलीसिया में, और हम अपने बच्चों को भी यह सिखाते हैं। फिर बेटा चर्च में जाना है, इसके बगैर हमारी जिंदगी नहीं, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। उन बच्चों को मालूम हो जाता है कि हमारा ईमान क्या है और हमने उस ईमान में आगे कैसे बढ़ना है। सो अपने ईमान को जाहिर करने के लिए जरूर हमें इबादतों में शामिल होना चाहिए, और फिर सैक्रामेंट्स में, मुकद्दस रसूमात में हमें शामिल होना चाहिए। प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं ज्यादातर दो सैक्रामेंट्स पे ईमान रखती हैं। सैक्रामेंट्स वो हैं जो मसीह यीशु ने काम खुद किया और जिसको करने का हुक्म दिया, ठीक है, ये डेफिनेशन है, ये तारीफ है, जो यीशु ने खुद किया है और फिर करने का हुक्म वाज़े तौर पर दिया है। उसमें बपतिस्मा यीशु ने लिया भी और फिर हुक्म भी दिया, और अशाय रबानी में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ ज़ियाफ़त खाई, फसा खाई, और उसके बाद उसने उनको कहा कि मेरी यादगारी में ये किया करो। कुछ कलीसियाएं हैं जो सात सैक्रामेंट्स मानती हैं, उनके उनकी अपनी चॉइस है, हम उनको क्रिटिसाइज नहीं करते, मुखालफत नहीं करते, हम उनकी अपनी चॉइस है ये। लेकिन सैक्रामेंट्स में शिरकत करने से पता चलता है कि आपका ईमान क्या है। आप बपतिस्मा ले रहे हो, इसका मतलब है कि आप खुदा बाप और बेटे और रूह अल-कुदस पर ईमान रखते हो, यीशु की मौत पर ईमान रखते हो, उसके दफन और जी उठने पर ईमान रखते हो, और उसमें मिलने वाली निजात और गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी पर यकीन रखते हो। जब आप अशाय रबानी में शरीक होते हो तो आप यह यकीन रखते हो कि यीशु मेरे लिए मुआ, उसका बदन और खून मेरे लिए तोड़ा गया और बहाया गया, और उसको खाने और पीने से मुझे हमेशा की जिंदगी मिलती है, मसीह मुझ में और मैं उसमें कायम होते हैं, और मैं आखिरी दिन फिर जिंदा किया जाऊंगा। आप अपने ईमान का इजहार करते हैं इन मुकद्दस रसूमात या सैक्रामेंट्स में शामिल होकर। जरूर शामिल हो, खुदा काबिलियत बख्शता है, जरूर बपतिस्म के अमल से गुजरें, जरूर बपतिस्मा लें, और अशाय रब्बानी में जरूर शिरकत किया करें। खुदावंद ने कहा है जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। उलट कर लो, जो मेरा गोश्त नहीं खाता और मेरा खून नहीं पीता हमेशा की जिंदगी उसकी नहीं है। जिंदगी जोड़ दी इस बात के साथ कि जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। तो जरूरी है ये, जब आप हमारे साथ मेज में अशाय रब्बानी में शरीक नहीं होते तो हमें खतरा लगता है कि आप यीशु की मौत पर ईमान रखते हो कि नहीं, आप उसके निजात दहिंदा होने पर ईमान रखते हो या नहीं, आप उसके बदन और खून में निजात की मौजूदगी हमेशा की जिंदगी की तासीर पर ईमान रखते हो या नहीं। तो जरूरी है मुकद्दस रस्मों में शामिल होना, इससे हम जाहिर करते हैं कि मेरा ईमान क्या है। गैर मसीही, गैर ईमानदार लोग जो बाइबली ईमान के हामिल नहीं है, वो हमारे साथ ना बपतिस्मे में शरीक होते हैं और ना अशाय रब्बानी में। तो ये जरूरी है, कलीसिया का हिस्सा बनना जरूरी है, कलीसिया के साथ मिलके ईमान का इकरार करना जरूरी है, और फिर इबादतों में शामिल होना जरूरी है, और मुकद्दस रसूमात में, सैक्रामेंट्स में शामिल होना जरूरी है ईमान जाहिर करने के लिए। अगर आप यह नहीं करते तो फिर शक बनता है कि आप ईमानदार हो भी के नहीं। और फिर कलीसियाई नज्म व जब्त की पाबंदी है, जब हम पाक कुल कलीसिया पर, पाक कैथोलिक कलीसिया यानी यूनिवर्सल आलमगीर चर्च पर ईमान रखते हैं कि खुदा की कलीसिया पूरी दुनिया में फैली हुई है, जब हम थोड़े से लफ्ज ये बोलते हैं तो हम कलीसिया के पूरे इंस्टीट्यूशन, पूरे इदारे, पूरे डिसिप्लिन, पूरे नज्म व जब्त, पूरे स्ट्रक्चर पर ईमान का इजहार करते हैं कि खुदावंद ने कलीसिया बनाई, खुदावंद इस कलीसिया का बनाने वाला है, खुदावंद इस कलीसिया का बुनियाद रखने वाला है, खुदामद ही है जिसकी वजह से यह कलीसिया कायम है, खुदामद ही कलीसिया का सर है, खुदामद ही कलीसिया का दुल्हा है, खुदामद ही कलीसिया का बादशाह और खुदामद है। हम ईमान रखते हैं कि कलीसिया खुदा की है और हम उसके लोग हैं, हम खुदा के बदन का हिस्सा हैं, एक हिस्सा है हम, और हम कलीसिया का जो डिसिप्लिन है, जो असूल है, जो कानून है, जो जाबते हैं, जो कवायद हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो एक कोड ऑफ कंडक्ट है, प्रोसीजर है, हम उसको फॉलो करें, उसकी पाबंदी करें। अगर आप ईमान रखते हो और मसीही ईमान के हामिल हो और खुदा की कलीसिया की बाबत जब आप ईमान का इकरार कर चुके हो कि मेरा ईमान है खुदा की पाक कलीसिया पर और मुकदसों की रफाकत पर, तो फिर आप कलीसिया के सारे कायदे कानून के ताबे रहो। अगर आप कलीसिया के खिलाफ उलट जाने की कोशिश करोगे, डिसिप्लिन तोड़ोगे, जो नज्म व जब्त है कलीसिया का वो खराब करने की कोशिश करोगे, तो फिर इसका मतलब है कि आप दुरुस्त ईमान के हामिल नहीं हो। जैसे आप अपने इदारों में डिसिप्लिन में कायम रहते हैं, वक्त पे आना है, वक्त से पहले छुट्टी नहीं करनी, अगर यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म में आना है, आईडी कार्ड जरूरी है तो वो लेके आना है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो आपकी ड्यूटियां हैं वो पूरी करनी है, ये आपके वर्क एथिक्स हैं, ये आपकी जिम्मेदारियां हैं अपने इदारों की। इसी तरह से खुदा की कलीसिया के भी कानून, कायदे, जाबते, दस्तूर, निजाम है जो खुदा के कलाम में वजह है, आप उसे फॉलो करें, आप उस पर कायम रहें। अगर आप कलीसिया का नज्म व जब्त खराब करने की कोशिश करेंगे तो मुझे शक होगा कि आप ईमानदार भी हो कि नहीं, क्योंकि जो ईमानदार हैं वो हर एक चीज कायदे और करीने से करते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम यह सिखाता है कि सब बातें करीने से, सलीके से, शाइस्तगी से होनी चाहिए, इन गुड ऑर्डर एंड डिसिप्लिन होनी चाहिए। तो अपने ईमान का इजहार हम कलीसिया में डिसिप्लिन मेंटेन करके करते हैं, और फिर हम अपने ईमान का अमली मुजाहरा करते हैं कलीसिया का हिस्सा होते हुए कि हम चर्च लीडरशिप की अथॉरिटी को सबमिट करते हैं, हम अतात करते हैं, फरमा बरदारी करते हैं, ताबे फरमानी करते हैं, हुक्म मानते हैं, जो चर्च लीडरशिप की तरफ से हुक्म मिलता है हम उसे फॉलो करते हैं। चर्च लीडर्स में सिर्फ पासवान अकेला नहीं होता, चर्च लीडरशिप में वो सारी टीम होती है जो चर्च कमेटी या चर्च बोर्ड या सेशन या पैरिश काउंसिल या पैरिश कमेटी कहलाती है, मुख्तलिफ नाम है मुख्तलिफ कलीसियाई इदारों में, प्रेस्बिटेरियन उसे सेशन कहते हैं और जो एपिस्कोपल हैं वो उससे पैरिश काउंसिल या पैरिश कमेटी कहते हैं, बहरीन में उसे चर्च कमेटी या चर्च बोर्ड का नाम दिया जाता है। एक ग्रुप है जो कलीसिया में जिम्मेदारी पूरी करता है कयादत की, लीडरशिप की, फैसले करने में, सारा इंतजाम करने में। पासवान का काम रूहानी मामलात में है, लेकिन दूसरे जो साथी हैं, सेशन है, पैरिश काउंसिल या कमेटी है या चर्च कमेटी या चर्च बोर्ड है, एल्डर्स हैं, डीकन्स हैं, वो सारे इंतजामी जिम्मेदारियां पूरी करने वाले हैं। जब चर्च की लीडरशिप, चर्च कयादत की तरफ से कोई बात कही जाती है, आप उसे मानते हैं तो जाहिर होता है आप ईमानदार हो, क्योंकि आप समझते हो कलीसिया को, आपका ईमान है कलीसिया पर जो पाक है और खुदा की है, और आप ईमान रखते हो मुकद्दसों की रफाकत पर, फेलोशिप पर। खुदा ने कलीसिया में कयादत दी है, हमें उसके ताबे रहना है। पासवानों के ऊपर भी लीडर्स होते हैं, कहीं मॉडरेटर्स होते हैं, कहीं एग्जेक्टिव कमेटी होती है, कहीं जनरल असेंबली होती है, कहीं प्रेस्बिटेरी है, कहीं पे डायसिसन काउंसिल है, कहीं पे सिनड है, हमारे ऊपर भी जिम्मेदार होते हैं लोग जो हमें जांचते परखते हैं, हमारे बारे में इख्तियार रखते हैं। मुझे बतौर खादम, बतौर पासबान, अपने ऊपर जो इख्तियार रखने वाले हैं हमें उनके ताबे रहना है, और कलीसिया को जो कलीसिया में के आदत है, लीडर्स हैं, उनके ताबे रहना है। आप अपना ईमान जाहिर करोगे जब आप कलीसियाई क़यादत के, चर्च लीडर्स के ताबे रहोगे, उनकी बात मानोगे। कईयों को होता है ये बंदा मुझे पसंद नहीं, आपको नहीं पसंद, खुदा को तो है ना, इसलिए वो उस जगह पे आ गया है। अगर वो खुदा को पसंद ना होता तो वो उस जगह पे ना आता, उसके लिए खुदा रास्ते में कोई रुकावटें बना देता। तो कमेटी में कोई भी शख्स है ये मत सोचे कि इसका नाम क्या है, इसका चेहरा क्या है, इसका नैन नक्श क्या है, इसका घराना क्या है, इसकी तालीम क्या है, ये कौन है। नहीं, खुदा ने उसे तौफीक दी और वो उस मुकाम पे आ गया, वो एल्डर डीकन बन गया, वो पैरिश काउंसिल कमेटी का मेंबर बन गया है। ये खुदा की मर्जी और खुदा का इरादा रहा है। उसे कबूल करें, उसकी अथॉरिटी को कबूल करें, उसके इख्तियार को कबूल करें, और जो कुछ कलीसियाई लीडरशिप, कलीसियाई की आदत आपके लिए फैसला करती है, आपके लिए रहनुमाई का कोई प्लान बनाती है, पॉलिसी बनाती है, आपको इंस्ट्रक्शन, हिदायत देती है, आप उसको फॉलो करें। अगर आप मुखालिफ जाएंगे तो इसका मतलब है कि आप खुदा की कलीसिया का निजाम बिगाड़ रहे हैं, और जो कोई खुदा की मुकरर की हुई कयादत के खिलाफ चलता है वो दरअसल खुदा के खिलाफ चलता है। तो अपने ईमान का इजहार हमें करना है चर्च लीडरशिप के ताबे रह के, सबमिट करके, अपनी मर्जी नहीं करनी, वो जो इंस्ट्रक्शंस दें उसे फॉलो करना है। और फिर मुख्तलिफ कलीसियाई खिदमात में शमूलियत, इस तरह से हम कलीसिया में अपने ईमान का इजहार करते हैं। कलीसिया का हिस्सा होना सिर्फ ये नहीं है कि आए, बैठे, आमीन किया, सर उठाया और चले गए, ये नहीं है। कलीसिया एक पूरा निजाम है, एक पूरा इदारा है, इसके अंदर बहुत सारे काम हैं। सिर्फ यहां खड़े होकर तालीम देना एक काम है, ड्रम्स बजाना, कीज प्ले करना, गिटार बजाना, ढोलक, तबला, चिमटा, दफ, ये सारे साज बजाना भी हिस्सा है। इसके अलावा बच्चों को तालीम देना, नौजवानों की खबरगिरी करना, उनको तालीम देना, ख्वातीन के दरमियान खिदमत करना, गाड़ी चला के लोगों को लाना ले जाना, इबादत का इंतजाम करना, माइक सेट करने, साउंड सिस्टम और सारे कैमरा वर्क और ये ट्रांसमिशन को पॉसिबल करना, लोगों के बैठने का इंतजाम करना, फिर उनको बाहर तक रास्ता दिखाने का इंतजाम करना, हर तरह से हदिया उठाना, गिनना, रिकॉर्ड करना, ढेरों काम है। अगर आप अपने आप को ला ताल्लुक रखते हैं, जी मेरा कोई काम नहीं है, वो जाने उनका काम जाने, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं बस आता हूं चला जाता हूं, तो इस तरह से आप गलत कर रहे हो, आप अच्छा ईमान जाहिर नहीं कर रहे। आपको खुद ऑफर करना है, मैं ये खिदमत करना चाहता हूं, मेरे अंदर ये जज्बा है, मैं ये काम करना चाहता हूं। पेश करें अपने आप को मुख्तलिफ खिदमतों के लिए, और फिर कलीसिया में अपनी जिम्मेदारियां अपनाना और अंजाम देना, यह बड़ा जरूरी है। अगर आप दावा करते हैं कि मैं ईमानदार हूं, तो आपको कलीसिया में अपनी जिम्मेदारी अपनानी पड़ेगी, उसे पूरा करना पड़ेगा। आप भाग नहीं सकते कलीसिया के जिम्मेदारियों से। खुदा ने आप पे जिम्मेदारियां डाली हुई हैं कि आपने कलीसिया में हदीये नजराने लेके आने हैं, जिम्मेदारी आप पे डाली है कि आपने गाड़ी चलानी है, जिम्मेदारी आप पे डाली है कि बच्चों को पढ़ाना है, जिम्मेदारी आप पे डाली है कि इबादत का इंतजाम करना है। अपनी अपनी जिम्मेदारी अपनाएं, उसे पूरा करें। और अगर आप जिम्मेदारी से भाग रहे हैं तो फिर कौन सा बेटा ऐसा है कि जो कोई काम धंधा ना करे, और घर वालों को कहे कि शादी भी करो, मेरे बच्चे भी पैदा होंगे, पढ़ाने भी आपने हैं, रोटी भी आपने खिलानी है, गाड़ी भी आपने लेके देनी है, मेरा मोबाइल भी हर महीने चेंज होना चाहिए। बाप ऐसे बेटे को घर में रखेगा या आग करेगा, एक्सपेल करेगा ना उसे, कि धेला तू कमाता नहीं है और सारी फरमाइशें हम पे डाल रहा है, जा फिर जहां से पूरी होती है वहां से कर ले। तो ऐसा वक्त भी आ सकता है कि कलीसिया डिसिप्लिन का हिस्सा है, जो लोग कलीसिया में अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते फिर उनका कलीसिया में कोई हिस्सा नहीं रहता। इससे पहले कि हिस्सा खत्म हो जाए जिम्मेदारी समझ लीजिए। दूसरे ईमानदारों के साथ बिला तफरीक मोहब्बत करना, इससे हम जाहिर करते हैं कि हम ईमानदार हैं। खुदा यसु ने कहा कि میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو، اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اس سے ظاہر ہوگا کہ تم یسوع کے ماننے والے ہو، اس سے ظاہر ہوگا کہ تمہارا ایمان خداوند یسوع پر ہے، جس نے محبت میں جان دے دی۔ میری طرح محبت رکھو۔ اس نے اپنے لوگوں سے صرف محبت نہیں رکھی، اس نے دنیا سے محبت رکھی ہے۔ خدا کی محبت صرف نیک آدمیوں کے ساتھ نہیں، اپنوں کے ساتھ نہیں۔ یسوع نے کہا کہ تم اپنوں کو ہی سلام کرتے ہو، کون سا بڑا کام کرتے ہو؟ نیکیاں اپنے لوگوں سے کرتے ہو، کون سا بڑا کام کرتے ہو؟ دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ میں کہتا ہوں تو اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھو، سب سے۔ اور چونکہ ہم ابھی صرف کلیسیا کی بات کر رہے ہیں، تو کلیسیا میں آپ ذمہ دار ہیں ساری کلیسیا میں سب سے یکساں محبت کرنے کی، اور یہ پاک محبت ہے۔ میں یہ فلموں ڈراموں والی محبت کی بات نہیں کر رہا، یہ پاک محبت ہے جو خدا کی محبت ہے، جو بے لوث ہے، جس میں کوئی لالچ نہیں، کوئی بدی نہیں۔ یہ پاک محبت ہے، معتبر محبت ہے، جو خدا کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے ہم بھی کریں۔ اگر ہم کلیسیا میں ایک دوسرے سے محبت نہیں رکھتے تو اس کا مطلب ہے کہ میرا ایمان یسوع مسیح پر نہیں ہے۔ اور پھر دوسرے ایمانداروں کی بلا تفریق مدد کرنا ہے، جو کلیسیا میں موجود ہیں، ہمارے بہن بھائی، ہمارے دوست، ہمارے ساتھی، ہم ایمان لوگ ہیں، ان میں سے کوئی مشکل میں ہے۔ تو یہ تو شروع سے دستور ہے ابتدائی کلیسیا کا کہ لوگ اپنی جائیدادیں بھی بیچ کر رسولوں کے قدموں میں، چرچ لیڈرز کے قدموں میں لا کر رکھتے تھے، جی آپ استعمال کیجئے انہیں۔ جب مدد کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کی، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم ایماندار ہیں، کیونکہ رسول جب ہدیے رسیو کرتے تھے تو ضرورت مندوں میں بانٹ دیتے تھے، لوگ ضرورت پوری کر دیتے تھے ایک دوسرے کی، جس کی جو ضرورت ہوتی تھی پوری کر دی جاتی تھی۔ لوگ اپنے مال کو اپنا نہیں کہتے تھے، ضرورت جس کی تھی اس کو پورا کر دیتے تھے۔ تو یہ ایمان کا اظہار ہوتا ہے۔ اور پھر سب باتوں میں ہمیں خدا کو اول درجہ دینا ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ میں اگر ایمان رکھتا ہوں تو مجھے سب باتوں میں خدا کو اول درجہ دینا ہے، اپنے کرکٹ میچ کو نہیں، اپنے فٹ بال میچ کو نہیں۔ ٹھیک ہے ہم بحرین میں جاب کی وجہ سے ہیں، ملازمت نوکری کی وجہ سے ہیں، لیکن اگر جمعے کے دن چھٹی ہے تو گھر میں بیٹھے رہنے کا فائدہ؟ بچوں کو پارک لے جائیں گے، چرچ نہیں لے کے آئیں گے؟ مووی دکھانے لے جائیں گے، چرچ نہیں لے کے آئیں گے؟ خدا کو اول درجہ دیں سب باتوں میں، اپنی مرضیاں نہیں پوری کرنی، خدا کی مرضی کو اول درجہ دینا ہے، خدا کے ارادوں کو اول درجہ دینا ہے، خدا کے کلام کو اول درجہ دینا ہے، خدا کے گھر کو اول درجہ دینا ہے، خدا کی کلیسیا کو اول درجہ دینا ہے، خدا کے کاموں کو اول درجہ دینا ہے۔ اگر ہم خدا کو اول درجہ نہیں دیتے سب باتوں میں، تو سمجھ لیں کہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے۔ ہمیں خدا کو اول درجہ دینا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں اول بنایا ہے، اس نے اپنے بیٹے کی موت کے وسیلے ہمیں خرید لیا ہے، ہمیں سب سے قیمتی بنا دیا ہے۔ تو کلام کہتا ہے کہ آؤ اس سے محبت رکھے، کیونکہ پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی۔ سب باتوں میں، سب باتوں میں، سب سے بڑھ کر ہمیں خدا سے محبت کرنی ہے اور خدا کو اول درجہ دینا ہے۔ یہی طریقہ ہے ایک کلیسیا کا حصہ ہوتے ہوئے اپنے ایمان کا اظہار کرنے کا۔